قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے
کہ دل کو کیسی باتی ہے کھانے پینے کا ان کے ہم خیال رکھتے ہیں ان کو نہ ہو تکلیف یہ دھیان رکھتے ہیں
قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے بچوں اور کک مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم آ چکے ہیں پروگرام لے کر بچوں کی بقرعید لے کر ایک بار پھر ہم آ چکے ہیں آج کے پروگرام میں بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے اچھی اچھی باتیں ہوں گی مزیدار سی چیٹنگ ہوگی ایکٹیویٹی بھی ہونی ہے انوکھے جانور بھی دیکھنے ہیں ڈاکٹر صاحب سے بھی ملنا ہے اور بہت کچھ سیکھنا بھی ہے آپ نے پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہم نے چلنا ہے ہمارے سیگمنٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے پروگرام میں شامل کرنا ہے درود پاک کی فضیلت کو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے آئیے بچوں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلا تاخیر ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں جی شروع کیجیے
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مشبوہ بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی وٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا
جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہم نے چلنا ہے ہمارے سیگمنٹ ڈسکشن کی طرف تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ڈسکشن
قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے
آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جانوروں کے حقوق الحمدللہ ہمارا پیارا پیارا دین اسلام جہاں ہمیں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے وہیں ہمیں جانوروں کے رائٹس بتاتا ہے
صحیح کہا آپ نے ہم جو جانور اور پرندے پالتے ہیں ان کا دھیان رکھنا اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا تو بہت ضروری ہے
ورنہ جانوروں کو پالنا اور انہیں بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے
اسی طرح پرندوں کے بچوں کو گھونسلوں سے نکال لینا اور بغیر کسی وجہ کے ان پرندوں کے ماں باپ کو دکھ دینا بہت بے رحمی اور ظلم کی بات ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں
اسی طرح جو جانور کام وغیرہ کے لیے پالے جاتے ہیں تو ان کو گھاس چارہ اور پانی دینا تو ضروری ہے
اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لینا یا انہیں بھوکا پیاسا رکھنا اور بغیر کسی وجہ سے ان کو مارنا خاص طور پر ان کے چہروں پر مارنا گناہ کی بات ہے
تو جانوروں کا خیال رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے
اور یہ بے زبان جانور بھی
हमारी तरह अल्लाह पाक की एक खूबसूरत क्रिएशन है।
तो जब आम जानवरों और पालतू जानवरों के बारे में इतने हुकूक बताए गए हैं, तो फिर कुर्बानी के जानवर का तो और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसको हम अल्लाह पाक की रिजा के लिए कुर्बान करते हैं।
और फिर वैसे भी ये हमारे पास चंद ही दिनों का मेहमान होता है, तो इसलिए कुर्बानी के जानवर की तो खूब खिदमत करनी चाहिए।
इसे खिलाना पिलाना चाहिए और इसके लिए अच्छी जगह का इंतजाम करना चाहिए, और हर वो चीज जिससे जानवर को तकलीफ हो सकती है उससे जानवर को बचाना चाहिए।
कुर्बानी के दिन आए के ईद आई है।
जी प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आज की डिस्कशन सुनी और अब वक्त हुआ है इसके कॉन्क्लूजन का। अगर इन सारी डिस्कशन का कॉन्क्लूजन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि पालतू जानवर का ख्याल रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, और पालतू जानवर को भूखा प्यासा रखना गुनाह की बात है। और प्यारे बच्चों, सिर्फ पालतू जानवर को ही नहीं बल्कि किसी भी जानवर को हमें बिला वजह तकलीफ नहीं देनी चाहिए, और ख़ास तौर पर कुर्बानी के जानवर का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की राह में वो कुर्बान होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट था डिस्कशन का, अब हमने चलना है अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जवाब दीजिए।
कुर्बानी के दिन आए के ईद आई है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है सवाल और जवाब का। अब देखते हैं कि कौन जवाब दे पाता है और कौन नहीं दे पाता। तो शुरू करें
जी।
तो पहला सवाल ये है कि ये बताइए, क्या एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबाह कर सकते हैं? जी आप बताइए।
एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबाह नहीं करना चाहिए।
जी हाँ, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबाह नहीं करना चाहिए। इनका जवाब भी दुरुस्त है। तो अब ये है कि दूसरा सवाल, बकरीद के दिन मीठी चीज नमाज से पहले खानी चाहिए या नमाज के बाद, या खानी नहीं चाहिए? कौन बताएगा? चले आप बताएं।
बकरीद में नमाज के बाद और मीठी ईद में नमाज से पहले।
बकरीद पर नमाज के बाद मीठी चीज खानी चाहिए और मीठी ईद को नमाज से पहले। तो इनका जवाब भी दुरुस्त है। ये बताइए कि जानवर ज़िबाह करने वाले के लिए सबसे अहम शर्त क्या है जिसका ध्यान रखना जरूरी है?
उसका मुसलमान होना जरूरी है।
जी हाँ, उसका मुसलमान होना जरूरी है। इनका जवाब भी दुरुस्त है। ये बताइए, नबियों और रसूलों के बाद मखलूक में सबसे अफजल कौन है? आप बताएंगे। जी
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु।
जी सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु नबियों और रसूलों के बाद मखलूक में सबसे अफजल हैं। इनका जवाब भी दुरुस्त है।
सुभान अल्लाह।
अब ये बताएं कि नियत किसे कहते हैं? आप उनको दे माइक, चलें।
दिल के पुख्ता इरादे यानी पक्के इरादे को कहते हैं।
जी हाँ, दिल के पुख्ता यानी पक्के इरादे को नियत कहते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। ये बताइए कि सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई?
इबलीस शैतान।
जी हाँ, पहला झूठी कसम खाने वाला इबलीस शैतान ही है। इनका जवाब भी दुरुस्त है। चार मशहूर खुलफाए राशिदीन के नाम बताएं।
हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल खुजा रदी अल्लाह
तआला अन्हु। जी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब इनका भी दुरुस्त है। वो कौन सा जानवर है जिसकी खाल पर बैठने से आजिज़ी पैदा होती है? बताएं।
दुम्बे की खाल पर बैठे।
सही है, दुम्बे को मेंढा भी कहा जाता है। तो इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। बकरी और मेंढा, इनकी खाल पर बैठने से आजिज़ी पैदा होती है। इनका जवाब भी दुरुस्त है। पाकिस्तान के किस सूबे को बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाजा कहा जाता है? जी हाँ, सूबा सिंध। इनका जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक के किस सूरा में सिर्फ एक जेर आती है? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, वो कौन सी सूरा है जिसमें सिर्फ एक जेर आती है? चले यहाँ मौजूद बच्चों को पता है, चले बताएं, इनको माइक दें।
सूरे इखलास।
जी हाँ, सूरे इखलास में सिर्फ एक जेर है। इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट जवाब दीजिए। اب ہم نے چلنا ہے جس میں ہم واقعہ سنتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے.
قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے.
پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, تو ہمارا سیگمنٹ ہے قرآن میں ذکر ہے, اور آج کے اس قرآن میں ذکر ہے سیگمنٹ میں ہم ایک انوکھی گائے کے بارے میں سننے جا رہے ہیں. قرآن پاک کی دوسری سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت بھی ہے. لیکن کیا آپ کو بتائیں کہ بقرہ کے معنی کیا ہیں؟ اس سورت میں ایک مہنگی گائے کا ذکر ہے اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے, یعنی گائے والی سورت. آئیے بچوں, میں آپ کو اس کا واقعہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل نام کی ایک قوم میں ایک بہت ہی نیک اور سچے انسان ہوا کرتے تھے. ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اور ان کے پاس جو ہے صرف ایک گائے تھی. کتنی گائے تھی؟ صرف ایک گائے تھی. جب اس نیک انسان کے وفات کا وقت قریب آ گیا تو اس بچیا کو وہ جنگل میں لے گئے اور ایک جھاڑی کے پاس اسے چھوڑ کر کہنے لگے کہ اے اللہ پاک, میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری حفاظت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بڑا ہو جائے. اس کے بعد اس نیک انسان کا انتقال ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر وقت گزرتا گیا اور بچیا بڑی ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اس نیک آدمی کا جو بچہ تھا نا, وہ بھی بڑا ہو گیا. پھر کیا ہوا بچوں؟ اب وہ بچہ بھی اپنے ابو کی طرح نیک اور اچھا انسان بنا. وہ اپنی امی کی ہر بات مانتا تھا اور اچھے اچھے کام بھی کرتا تھا. وہ ہر رات سونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت بھی کرتا تھا اور اپنی امی کی خدمت بھی کرتا تھا. اسی طرح روزانہ صبح کو وہ جنگل سے جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور ان کو بیچتا تھا, اور جو پیسے اسے ملتے تھے وہ ان پیسوں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا, غریبوں کی مدد کرتا, نیک کاموں میں خرچ کرتا اور اپنی امی کو بھی پیسے دیتا تھا. ایک دن اس نیک لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے, تمہارے ابو نے ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے جنگل میں اللہ پاک کی حفاظت میں چھوڑ دیا تھا. اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا, تو میرے ابو کی دی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے. اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے یعنی یلو رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی کہ گویا کہ اس کی کھال سے سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں. یہ سن کر لڑکا جنگل میں گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر پر لے آیا. سبحان اللہ. پیارے بچوں, آپ نے دیکھا کہ جو گائے سالوں پہلے ان کے والد صاحب نے جنگل میں چھوڑی تھی, اور پیارے بچوں اتنے سالوں تک وہ بچیا محفوظ رہتی ہے, اور کیوں نہ ہوتی, وہ اللہ پاک کی حفاظت میں جو تھی. لیکن پیارے بچوں, یہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا. ابھی تو آپ نے صرف یہ سنا ہے نا کہ اس لڑکے کو اس کے ابو کی دی ہوئی گائے کس طرح ملی. کل ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس گائے سے اس لڑکے کو کتنا پروفٹ ہوا. تو اگر آپ یہ واقعہ پورا سننا چاہتے ہیں تو کل بچوں کی بقرعید پروگرام ضرور دیکھیے گا. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار یہ گائے دنیا کی مہنگی ترین گائے کیوں ہے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. تو اب ہم نے چلنا ہے ہمارے ایک اور پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں؟
قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے.
پیارے بچوں اور کڈ مدی چینل کے ناظرین, آپ سب کو آنے والی بقر عید ایڈوانس میں مبارک ہو. بقر عید کیا آتی ہے, مسلمانوں کے دل خوشی سے کھلنے لگتے ہیں. پیارے بچوں, یہ جو قربانی کرتے ہیں وہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا آرڈر فرمایا تھا اور آپ نے اللہ پاک کا آرڈر مانا اور اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے گئے. لیکن پھر آخر میں اللہ پاک نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کر دیا گیا, اور یوں آپ علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. لیکن پیارے بچوں, شیطان جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے, وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اللہ پاک کی بات مانے اور اسے خوش کریں۔ شیطان کو جب معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کو ماننے جا رہے ہیں تو وہ جلدی سے ایک جاننے والے کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا آرڈر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں اس کی فرما برداری یعنی اوبیڈینس کروں گا۔ شیطان آپ کی بات سن کر مایوس ہو گیا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا آرڈر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کر کر بہت اچھا کیا، یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ پیارے بچوں، یہاں شیطان نے ہار نہیں مانی، پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اگر میرا ابو جان مجھے اللہ پاک کے حکم پر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں سے ناکام ہونے کے بعد بھی شیطان پیچھے نہیں ہٹا اور کچھ دور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 تنکریاں ماری تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر ایک جگہ پر آپ علیہ السلام کو بہکانے لگا تو ایک فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اسے ماریے۔ آپ علیہ السلام نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ لیکن پیارے بچوں، شیطان ایسا ڈھیٹ ہے کہ 14 کنکریاں کھانے کے بعد بھی ایک اور جگہ آپ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور اللہ پاک کے حکم کو ماننے سے روکنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اسے فرشتے کے کہنے پر 7 کنکریاں ماری، اس کے بعد شیطان راستے سے ہٹ گیا۔ پیارے بچوں، آج بھی جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ اس شیطان کو کنکریاں ماری تھی، اس جگہ پر آپ علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔
قربانی کے دن آئے ہے،
اب ہم نے چلنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔
قربانی کے دن
تکلیف دی، بہت ستایا ہے۔
میں نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟
تم نے مجھے پورا دن تک دھوپ میں کھڑا رکھا، میں چیختا رہا، لیکن تم نے میری ایک آواز نہ سنی۔ اس نے مجھے بھی بہت تکلیف دی، پورا دن بھوکا پیاسا رکھا، لیکن اس نے مجھے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ تمہاری طرح اس نے مجھے بھی ستایا، میرے لمبے لمبے کانوں کو پکڑ کر کھینچا اور مجھے مارا بھی۔
کیا ہوا بیٹا؟
ابو، میں نے خواب میں دیکھا، ایک بکرا یہاں پہ اور ایک بکرا وہاں پہ، مجھے ڈرا رہے تھے۔
دیکھو فیضان بیٹا، آپ سائیکل چلانے میں اتنے مگن ہو جاتے ہو کہ بکروں کا خیال ہی نہیں رکھتے ہو۔ بکروں اور دوسرے جانوروں کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو ٹائم پہ کھانا دینا، ان کو چھاؤں میں باندھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
بابا، میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بکروں کو کبھی نہیں ستاؤں گا اور ان کا خیال بھی رکھوں گا۔
شاباش بیٹا۔ اب ہم نے چلنا ہے جلدی سے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں۔
قربانی کے دن آئے،
جی تو بتی ناظرین اور پیارے بچوں، آپ سب کو سیگمنٹ डॉक्टर क्या कहते हैं, मैं खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ मोहम्मद रमजान रजा अत्तारी और हमारे साथ आज एक डॉक्टर नहीं बल्कि दो डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर शाहजहां और डॉक्टर मोहम्मद सरवर अत्तारी। जी डॉक्टर साहब आप कैसे हैं?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, आप सुनाए ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी तो डॉक्टर साहब हम आपसे रोज कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते हैं और आज हमारा मौजू है ऊँट, तो बच्चे आपसे ऊँट के बारे में सवाल करेंगे।
जी जी बिल्कुल सवाल करें आप।
जी सबसे पहले सवाल कौन करेगा?
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
मेरा आपसे ये सवाल है, अगर ऊँट को कोई चोट लग जाए तो उसका जख्म बनने में कितना टाइम लगता है?
ऊँट के जख्म की नौयत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जख्म कितना बड़ा है और किस जगह के ऊपर है। अगर सॉफ्ट टिश्यू है अगर तो उसका टाइम लगेगा, और अगर कोई ऐसी जगह पर है जो हार्ड है टिश्यू तो वो जल्दी क्विक रिस्पॉन्स के अंदर जख्म जो है वो फिल हो जाएगा और उसको जो है वो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, एंटीसेप्टिक वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। वो नौयत जख्म की डिपेंड करता है कि किस किस्म का जख्म है और कितना बड़ा जख्म है, और जितना बड़ा जख्म होगा उतना ही टाइम लेगा, जितना छोटा जख्म होगा उतनी ही जल्दी वो रिकवर हो जाएगा।
जज़ाकअल्लाह। ये तो किस वजह से नाज़रीन डॉक्टर साहब ने बताया कि जितना बड़ा जख्म होगा उतना टाइम उसको भरने में लगेगा। जी दूसरा सवाल कौन करेगा?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल है, ऊँट के कितने दांत होते हैं?
ऊँट के परमानेंट जो है वो 32 दांत होते हैं और जो दूध वाले जो कहलाए जाते हैं वो 22 दांत होते हैं, मुकम्मल जो है वो 32 दांत होते हैं।
जज़ाकअल्लाह।
जी तो किस वजह से नाज़रीन डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि ऊँट के परमानेंट दांत होते हैं ना तो वो 32 होते हैं और जो दूध वाले मिल्क वाले दांत कहलाते हैं वो 22 होते हैं। जी थर्ड सवाल कौन करेगा? चलो आप करें।
डॉक्टर साहब एक कोहान वाले ऊँट में और दो कोहान वाले ऊँट में क्या फर्क होता है?
ऊँट में कोई फर्क नहीं होता, ये ब्रीड जेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो दो कोहान वाली है वो हमारे जो है पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, ज्यादातर ये बाहर मुल्कों में पाई जाती है, हमारे ज्यादा जो है वो एक कोहान वाली पाई जाती है। ब्रीड जींस के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ जींस दो कोहान वाली है जो पाकिस्तान में पाई जाती है वो एक कोहान वाली।
शुक्रिया।
कोई फर्क नहीं होता सिर्फ।
जी जी तो हमें मदनी चाहिए नाज़रीन डॉक्टर साहब ने बताया कि एक कोहान वाले ऊँट में और दो कोहान वाले ऊँट में इतना फर्क नहीं होता, एक दो कोहान वाला ऊँट पाकिस्तान में पाया नहीं जाता। फोर्थ सवाल कौन करेगा? जी आपका।
डॉक्टर साहब ऊँट दिन में कितना पानी पीता है?
ऊँट जो है वो एक दिन के अंदर 130 से 150 लीटर पानी ऊँट एक दिन में पीता है।
जज़ाकअल्लाह।
जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ऊँट दिन में 130 से 150 लीटर तक पानी पीता है। डॉक्टर साहब ये अब मैं सवाल करता हूँ कि
जी जी
जैसे हम पहले पढ़ते थे कि ऊँट अगर एक बार पानी पी ले तो उसको काफी अरसे तक पानी पीने की जरूरत नहीं होती, ये सही है?
जी बिल्कुल, ऊँट अल्लाह ताला ने एक कुदरती उसे जो है एक नेमत से बख्शा है। ऊँट के अंदर स्टोरेज, स्टमक के अंदर वो अपना पानी स्टोरेज कर सकता है और कई टाइम कई महीनों तक जो है वो उसको ऊँट जो है जब ही तो रेगिस्तान का जहाज इसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान के अंदर जब ये लेके जाते हैं सफ़र के दौरान उसके ऊपर सफ़र किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ जो है पानी नहीं मिलता, तो कुदरत ने इन्हें जो है वो एक नेमत बख्शी है, वो पानी को स्टोर कर सकता है स्टमक के अंदर, तो उसी से जो है वो अपना काम चलाता है।
जी फिफ्थ सवाल कौन करता है? जी आप करें।
ऊँट को खाने में क्या पसंद है?
ऊँट को खाने के अंदर ग्रीन ग्रास के अंदर है, किकर है, शैतूत है, लुसन है, वो तकरीबन एक टाइम में 15 से 20 किलो जो है वो ग्रीन ग्रास खाता है, जो शौक से किकर है, शैतूत है, लुसन है, और उसके अलावा दाने के अंदर जो है वो अपना चना है, चने के छिलके हैं, जो है दलिया है, मिक्स दाना है, वो शौक से खाता।
जी और किसको सवाल पूछना है? आप पूछें चले।
ऊँट दिन में कितना चारा खाता है?
ऊँट दिन में 16 से 20 किलो हरा चारा खाता है, और जो दाना है जिसको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं, जो चोकर है, दलिया है, और जो है मकई है, ज्वार है, ये जो है तकरीबन 6 से 8 किलो ऊँट जो है रोजाना खाता है।
जज़ाकअल्लाह।
डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ऊँट 16 से 20 किलो ग्रीन घास एक दिन में खाता है और दाने वगैरह 8 से 10 किलो,
6 से 8 किलो,
6 से 8 किलो खाता है। जी चलें अगला सवाल कौन करने वाला है?
डॉक्टर साहब ऊँट की उम्र कितनी होती है?
ऊँट की औसतन उम्र 50 साल होती है।
जज़ाकअल्लाह।
जी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ऊँट की उम्र 50 ईयर्स होती है, 50 साल होती है। नेक्स्ट सवाल कोई करने वाला है? जी करें।
डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल है, ऊँट निलाते वक्त काटता तो नहीं है?
ऊँट को अमूमन तो नहीं निलाते, जो जो ऊँट रखते हैं, जो पालते हैं, जो उसकी खिदमत करता है, जो उसको चारा देता है, अगर वो उसको निलाएगा तो वो उसे नहीं काटेगा। अगर कोई दूसरा अनजान आदमी अगर उसके नजदीक जाता है तो हो सकता है शायद वो काटे। ऊँट ही नहीं दूसरे जानवरों में भी यही होता है कि जो जो मालिक या जो भी जानवर को पालता है उसे उनसियत हो जाती है और दूसरे लोगों से उनसियत नहीं होती। ये जो चीज़ है वो तमाम जानवरों में पाई जाती
है।
डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि काफी छोटे से बच्चे ऐसे होते हैं, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊँट चलाते हैं, ये दूसरे जानवर चलाते हैं बड़े जानवर, तो ऊँट या कोई भी बड़ा जानवर उनको लात वगैरह तो नहीं मारते?
देखो मैं तो यही उन बच्चों से, तमाम बच्चों से मैं ये कहूँगा कि कोई भी जानवर हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो बड़ा जानवर अपना ऊँट हो या कोई और दीगर जानवर हो, तो जानवर तो जानवर ही है, तो बेहतर ये है कि उसके करीब ना जाया जाए। उसका कोई पता नहीं है, वो नुकसान बड़ा जानवर जानवर कोई भी नुकसान दे सकता है, तो बेहतर है क्या एहतियात बरते और उसके नजदीक ना जाए।
जी तो मदनी चाहिए नाजिनो, प्यारे बच्चों डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि ऊँट और दीगर जानवर भी बड़े जानवर हमें लात नुकसान पहुंचा सकते हैं, लात वगैरह मार सकते हैं, तो हम सब उनके पास अकेले ना चलाएं, उनके पास अकेले ना जाएं, किसी बड़े को भी साथ लेके जा सकते हैं,
बड़े को साथ लेके जाएं ताकि अगर वो कोई नुकसान या अगर कोई गुस्से में आता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि छोटा बच्चा है, जानवर का कोई पता नहीं है, उसकी हैबिट का नहीं पता, तो एहतियात करना चाहिए।
तो बाज बड़े ऐसे होते हैं वो कहते हैं बेटा तुम चलाओ, हम यहीं बैठे हैं यहाँ पे, और जो है ना जैसे ही जानवर भागने लगे रस्सी छोड़ देना हम पकड़ लेंगे, अब वो दिखते ही नहीं उन बेचारे को, वो रस्सी छोड़ा के भाग भी जाता है।
तो जो बड़े हैं मैं उनसे भी यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप जो है वो ये जो लापरवाही है ये ना बरते, और बच्चों को मेहरबानी करके आप जो बड़े जानवर हैं वो उनके जो ना रस्सी पकड़वाएं ना उनको दें, ठीक है ना। अगर आप साथ उनके चलें खुद, और अगर रस्सी है तो वो खुद आप उनको साथ चलें ताकि कंट्रोल में आसानी हो जाए, बड़े जानवर को नहीं उसको संभाल सकते और कोई नुकसान का अंदेशा हो सकता है किसी भी किस्म का, वो किसी को मार भी सकता है, वो अपने आप को भी नुकसान देखता है, किसी और दूसरे को भी नुकसान देखता है, तो बेहतर यही है क्या जो छोटे बच्चे अगर कोई जिद कर भी रहा है तो बड़ा खुद उसके साथ जाए, ना कि वो उन्हें कहें कि आप रास्ता ले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए एहतियात है, एहतियात जरूरी है
जी,
ताकि नुकसान से बचा जा सके।
जी तो बननी चाहिए नाजिनो, प्यारे बच्चों आज हमें डॉक्टर सरवर अत्तारी और डॉक्टर शाहजहां भी हमारे साथ थे, दोनों डॉक्टरों ने हमें कुछ एहतियातें बताई, कुछ बातें बताई कि हमें इन सब चीजों से अवॉइड करना चाहिए और हमें ये काम करने चाहिए, हमें कितना जानवरों को चारा देना चाहिए, ये सब कुछ बताया। और दूसरी बात ये कि हमें अकेले बड़े जानवर नहीं चलाने, हमें अकेले बड़े जानवर
नहीं चलाने।
जी तो हम चलते हैं शफीक भाई की तरफ जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको दूसरे सेगमेंट की तरफ ले जाएंगे।
कुर्बानी के दिन आए के ईद आई है।
आपने सुना कि डॉक्टर साहब जानवरों के बारे में क्या कह रहे थे, जानवरों के बारे में सुनाना तो है, अब वक्त हुआ है आपको कुछ दिखाने का, तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट अनोखे जानवर।
कुर्बानी के दिन आए के ईद आई है।
माशाल्लाह वाह वाह कितना खूबसूरत और ऊंचा बैल है। बच्चों मुझे तो ये सिब्बी का लग रहा है, इसकी बॉडी पर एक बड़ा सा रेड कलर का डिजाइन वाला कपड़ा बांधा गया है, जबकि इसके हेड को भी अच्छे से सजाया गया है। अच्छा एक और मजे की बात, कुछ गायों और बैलों के सर पर सींग नहीं होते और कुछ के होते हैं, जैसे कि इस बैल के सर पर सींग मौजूद हैं, इसकी नाक में भी रस्सी डली हुई है और इसके मोरे से लेफ्ट और राइट भी रस्सियां डाली गई हैं कि अगर ये बैल नाराज हो जाए या इसे किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सके। वाह वाह इसकी क्या जबरदस्त हाइट है, इसकी चाल भी बड़ी ही दिलचस्प है और इसे टहलाने वाले भी दो अफराद हैं जो दोनों तरफ से इसकी रस्सी पकड़े हुए हैं। माशाल्लाह चौड़ा सीना, लंबी मजबूत टांगे और लंबी सी गर्दन है जिसपे एक छोटी सी घंटी भी बंधी हुई है जो इस जानवर की खूबसूरती और इसके निखार में और इजाफा कर रही है, जो बच्चों मुझे तो बहुत ही पसंद आ रही है। ये अपनी हाइट, अपने वेट और खूबसूरती की वजह से वाकई एक अनोखा जानवर है।
कुर्बानी के दिन आए के ईद आई है।
तो प्यारे प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम अपने सेगमेंट में आपको बताएंगे, क्योंकि उस सेगमेंट का नाम है क्या करें और क्या ना करें।
कुर्बानी के दिन आए
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुम्बे का ख्याल रखते वक्त क्या क्या करना चाहिए।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुम्बे का ख्याल रखते वक्त वो कौन सी चीजें जो नहीं करनी चाहिए।
बच्चे, जब भी आप दुम्बा लेकर आए तो उसे किसी बड़े के साथ मिलकर नहला धुला कर धूप लगाए ताकि वो जरासीम से पाक हो जाए।
दुम्बे को अपनी मर्जी से कुछ ना खिलाएं, ऐसा करने से वो बीमार भी हो सकता है।
बच्चे, जब भी आप दुम्बा लेकर आए तो उसे खाने पीने में सबसे पहले पानी दें ताकि अगर वो प्यासा हो तो उसकी प्यास बुझ जाए।
दुम्बे के बैठने और आराम करने वाली जगह सख्त फर्श या कंक्रीट नहीं होनी चाहिए।
गर्मी के मौसम में दुम्बे की प्यास का खास ख्याल रखें।
दुम्बे के बहुत ज्यादा करीब भी नहीं रहना चाहिए वरना वो टक्कर मार सकता है।
दुम्बे को सूखा चारा खिलाना चाहिए ताकि उसे कोई पेट की बीमारी ना हो।
प्यारे बच्चों, दुम्बे की खाल पे बहुत ज्यादा ऊन होती है, इसलिए दुम्बे की रस्सी को ज्यादा टाइट नहीं बांधनी चाहिए, इससे उनको फंदा भी लग सकता है।
दुम्बे को रात के वक्त दूसरे जानवरों के साथ बांधे ताकि वो अकेले में चीखे चिल्लाए ना।
दुम्बे के सींगों को हाथ नहीं लगाना चाहिए वरना वो गुस्से में आकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
गर्मियों के मौसम में दुम्बे के ऊन को कटवा लेना चाहिए, इससे वो ज्यादा हेल्दी और एक्टिव रहते हैं।
दुम्बे को ज्यादा गंदम नहीं खिलानी चाहिए, इससे दुम्बे की सेहत खराब हो सकती है और उसकी बॉडी पर स्वेलिंग हो सकती है।
दुम्बे को अपनी गिजा में नमक की भी जरूरत होती है तो हमें डॉक्टर से पूछकर उनकी गिजा में नमक मिला देना चाहिए।
कुर्बानी के दिन आए, ईद आई है।
प्यारे प्यारे बच्चों और किस मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। हमने कोशिश की कि आपको कुछ सिखा सकें, कुछ समझा सकें, कुछ दिखा सकें और कुछ आपके साथ हम बातें कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमने अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करनी है, लेकिन बच्चों अगला एपिसोड आपने ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें हम बताएंगे दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव गाय के बारे में। तो ज़रूर देखिएगा अगला एपिसोड, घर वालों के साथ देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जज़ाकअल्लाह खैरा, सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कुर्बानी के